इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी कि उसे खाना अच्छा नहीं लगा। वो अभिमन्यु से बोली, अगर आपको ये खाना अच्छा नहीं लगा तो आप अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर बोला, नहीं, हम खा लेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने दूसरा निवाला लिया। उसे वो खाना काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा था। जैसे ही उसने एक और निवाला खाया, उसे खांसी आने लगी। अभिमन्यु के गले में वो खाना अटक गया। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह खांसता देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और सामने टेबल पर रखा पानी का गिलास अभिमन्यु को दिया। उसकी पीठ को हल्के हाथों से सहलाते हुए बोली, आप ठीक है ना अभिमन्यु? लेकिन उसके जवाब में अभिमन्यु कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो खांसता ही जा रहा था। उसने जल्दी से आधा गिलास पानी पिया और इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता काफी चिंतित हो गई थी और उसकी पीठ सहलाती जा रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इट्स ओके इप्सिता, हम ठीक हैं। एक्चुअली खाना हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्पाइसी है। हम बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं, इसीलिए ये खाना हमसे हैंडल नहीं हो रहा। इप्सिता ने कहा, आई एम सॉरी, आप रहने दीजिए, ये मत खाइए। अगर आपको आदत नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए कुछ नॉर्मल सूप ऑर्डर कर देते हैं। अभिमन्यु ने मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दीजिए इप्सिता, हमें इतनी भूख नहीं लगी है। लेकिन इप्सिता ने वेटर को बुला लिया और मेन्यू कार्ड में देखते हुए एक स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर कर दिया। अभिमन्यु की इतनी देखभाल करते देखकर नंदिनी उन दोनों को छेड़ने के मूड में थी। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है ईशु, तू तो अभी से ही अपनी वाइफ वाली सारी जिम्मेदारी निभा रही है। चल, वैसे अच्छा लगा मुझे भी ये देखकर कि तुझे जीजू की कितनी फिक्र है। इप्सिता को पता था कि नंदिनी जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये बात बोल रही है, इसलिए वो नंदिनी को घूरने लगी। इप्सिता के ऐसे घूरने पर नंदिनी भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी। थोड़ी देर में अभिमन्यु के लिए सूप आया और अभिमन्यु आराम से बैठकर वो सूप पी रहा था। नंदिनी की कही बात उसके दिमाग में आ गई और वो इप्सिता की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, हमें इतना तो समझ में आ गया है कि इप्सिता बहुत अच्छी है और हमारी काफ़ी फिक्र भी करती है। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर ही सारी बातें सोच रहा था और अनजाने में ही उसके मन में इप्सिता के प्रति एक कोमल भाव जाग उठा था। वो इप्सिता की तरफ से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी सुंदर लग रही थी और इतनी देर बाद अभिमन्यु ने ये बात नोटिस की। नंदिनी ने भी उन दोनों को नोटिस कर लिया, खासकर जिस तरह से अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देख रहा था। उसे देखकर नंदिनी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, लगता है इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को अब स्वीकार कर चुके हैं। चलो अच्छी बात है, मेरी इशू थोड़ा सा तो आगे बढ़ी, वरना मुझे तो लग रहा था ये कुछ करेगी ही नहीं कभी। उन दोनों ने अपना खाना समाप्त कर लिया। वे लोग आराम से बैठे ही थे कि एक वेटर तीन गिलास लस्सी लेकर आया। उसने लस्सी के गिलास टेबल पर रख दिए। नंदिनी ने देखकर कहा, भैया हमने इसका ऑर्डर नहीं दिया। वेटर ने कहा, आप दोनों हमारी परमानेंट कस्टमर हैं, इसीलिए ढाबे के मालिक की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इप्सिता और नंदिनी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गईं। नंदिनी ने कहा, थैंक यू सो मच भैया, आप इसे यहीं पर रख दीजिए और बिल ले आइए। तीनों ने अपना लंच समाप्त कर लिया और नंदिनी ने बिल चुकाया। अभिमन्यु बिल चुकाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे जीजू, मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ ना, तो यहाँ का बिल तो मैं ही चुकाऊंगी। अभिमन्यु ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, अरे लेकिन हमारे होते हुए हम आपको। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि नंदिनी ने कहा, अरे हाँ हम जानते हैं, आप कुंवर हैं और आप हमें बिल नहीं चुकाने देना चाहते, लेकिन आप फिक्र मत करिए, नेक्स्ट टाइम जब हम आपकी शादी में वहाँ आएंगे तो आप हमें ऐसे ही ट्रीट दे दीजिएगा, ओके? अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके। वो दोनों इप्सिता की तरफ देख रहे थे। इप्सिता उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। तीनों एक साथ वहां से बाहर निकले। अभिमन्यु ने नंदिनी को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ दिया। नंदिनी इप्सिता की तरफ देखते हुए बोली, तो फिर ठीक है, कल एग्जाम है, टाइम से पहुंच जाना। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर कहा, ओ हेलो, तुम टाइम पर पहुंच जाना, हम हमेशा टाइम पर ही पहुंचते हैं, लेट तुम करती हो हमेशा। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर अपने दांत दिखाने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, बाय चीजू, कल मिलती हूँ आपसे। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और नंदिनी को वहां छोड़ने के बाद वो दोनों विला वापस आ गए। शाम हो गई थी, दोनों ताजा हुए। इप्सिता अपने एग्जाम की तैयारी में लग गई थी। उसने अपने नोट्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगी। कुछ बचे हुए नोट्स थे जिन्हें वो बना रही थी। तभी डिनर का समय हुआ और अभिमन्यु ने इप्सिता के साथ डिनर किया। इप्सिता डिनर करके वापस कमरे आई। उसने अपना सारा कोर्स रिवाइज कर लिया था, सब कुछ उसे अच्छी तरह याद था। तभी इप्सिता ने कहा, कल सुबह जल्दी उठना है, अगर जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी आंख नहीं खुलेगी, इसलिए हम अभी सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले अपने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और एडमिट कार्ड को निकालकर पर्स में रख लेते हैं, नहीं तो सुबह ढूंढने में दिक्कत हुई तो कहीं हम लेट ना हो जाएं। इप्सिता इतना बोलकर अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को देखने लगी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसे ना तो टेबल पर और ना ही सोफे पर कहीं भी डॉक्यूमेंट फाइल नजर नहीं आ रही थी, जिससे इप्सिता काफी परेशान हो गई। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, हमारी डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ चली गई? हमें अच्छी तरह याद है हम हॉस्टल से वो फाइल लेकर बाहर निकले थे और नंदिनी ने हमें एडमिट कार्ड भी दिया था। हमने उसे भी उसी फाइल में रख लिया था, तो फिर अब कहाँ रखती हमने वो फाइल? कहाँ ढूंढूं उसे? अपनी डॉक्यूमेंट फाइल ना मिलने की वजह से इप्सिता काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसने बेड के आसपास चारों तरफ देखा, बेड के नीचे झुककर फाइल को ढूंढ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अपनी फाइल नंदिनी के पास तो नहीं भूल आई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी सो गई थी और उसका फोन साइलेंट पर था, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। इप्सिता ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। उसने अपना फोन साइड टेबल पर रखकर कहा, हमें इतना तो याद है नंदिनी ने हमें वो फाइल दी थी, तो फिर हमने कहाँ खो दी अपनी फाइल? उसमें हमारे सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इप्सिता ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। अगर हम उसे लेकर हॉस्टल से बाहर निकले हैं तो हम उसे यहाँ लेकर जरूर आए होंगे। हम और कहीं तो गए भी नहीं, इसका मतलब उसे कमरे में ही होना चाहिए। इप्सिता उस फाइल को ढूंढ रही थी, उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इप्सिता ने जल्दी से आकर अलमारी खोलकर देखी, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। उसने अलमारी के सारे कपड़े उलट पलट दिए थे, उसे अभी भी अपनी फाइल नहीं मिली। वो फाइल को लेकर परेशान थी। तभी इप्सिता को उस अलमारी के ऊपर एक फाइल जैसा कुछ नजर आया और उसने कहा, वो ऊपर क्या रखा है? लेकिन हमारी फाइल वहां कैसे जा सकती है? वो कुछ और होगा। इप्सिता उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान उस पर ही जा रहा था। इप्सिता ने एक स्टूल को खींचकर अलमारी के आगे रखा। वो उस पर खड़ी होकर अलमारी पर अपना हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन इप्सिता का हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इप्सिता अपने पंजों के बल स्टूल पर खड़ी हुई। उसी वक्त अभिमन्यु अपने कमरे में जा रहा था। उसने इप्सिता के कमरे की लाइट्स ऑन देखी, तो वो इप्सिता के कमरे में झांक कर देखने लगा कि क्या वो अब तक पढ़ रही है। ये देखने के लिए जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा इप्सिता स्टूल पर खड़ी थी और वो स्टूल डगमगा रहा था। अभिमन्यु ने स्टूल को हिरते देखकर कहा, अरे ये स्टूल तो किसी भी समय गिर सकता है, अगर इप्सिता गिरी तो उन्हें चोट लग जाएगी।
अभिमन्यु इतना सोचकर जल्दी से इप्सिता के कमरे के अंदर आया। तभी इप्सिता का पैर लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से इप्सिता को पकड़ लिया। इप्सिता अभिमन्यु की गोद में गिर गई। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता को पकड़ा तो इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इप्सिता को अपनी कमर पर अभिमन्यु का हाथ महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। उसके सामने अभिमन्यु का चेहरा था। वो अभिमन्यु की गोद में थी। अभिमन्यु उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे डांटते हुए बोला, ये क्या कर रही थी आप इप्सिता? अभी अगर आप गिर जाती तो पता है आपको कितनी चोट लगती? कैसे आधी रात को स्टूल पर चढ़कर क्या कर रही थी आप? इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर परेशान लहजे में बोली, वो एक्चुअली हम। इप्सिता को इतना परेशान देखकर अभिमन्यु ने आराम से उसे जमीन पर खड़ा किया और थोड़ी चिंता करते हुए पूछा, क्या बात है, अब आप कुछ बताएंगी हमें? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इप्सिता ने उसे बताया, वो एक्चुअली हम अपनी डॉक्यूमेंट फाइल नंदिनी से लेकर आए थे और उसके बाद पता नहीं हमने उसे कहाँ रख दिया, वो मिल ही नहीं रही है। उसी में हमारा एडमिट कार्ड है और कल सुबह हमें एग्जाम देने जाना है। अगर वो नहीं मिला तो हम एग्जाम कैसे देंगे? इतना बोलते हुए इप्सिता रोने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी लापरवाही कैसे कर सकती थी। क्रमशः